प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम कक्षा टेंथ की सामाजिक विज्ञान में स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने गुप्त वंश तक अध्ययन कर लिया है। आज हम इसी अध्याय में आगे वर्धन वंश पुष्यभूति वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ध्यान पूर्वक सुने और याद करें। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। छठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा हुए। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र थानेश्वर का शासक बना राज्यवर्धन, लेकिन राज्यवर्धन की हत्या बंगाल की गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में कर दी गई थी। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन, राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, वह 606 ईस्वी में शासक बना, जो 647 तक शासक रहा, यानी जिसने लगभग 40 वर्ष तक शासन करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया, अपना यश बढ़ाया। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर कितने वर्ष तक शासन किया था? 40 वर्ष तक शासन किया था, 606 से 647 ईस्वी तक। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश वर्धन वंश का अंत हो गया, वर्धन वंश की समाप्ति हो गई। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। तो राज्यवर्धन की छोटी बहन राजश्री अपनी प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा थे, उनसे हर्ष ने संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। शशांक कौन था? बंगाल का शासक था, बंगाल का गौड़ वंश का राजा था। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 634 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट के पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कनौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्ष की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन के राज्य की कनौज राजधानी थी। हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। तो हर्ष की पदवी उपाधि थी महाराजा धीराज। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। बौद्ध धर्म के महायान शाखा की ओर अधिक हो गया था। वह पृथ्वी पांचवें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव का आयोजन करके दान पुण्य करता था। चीनी यात्री वेनसांग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। चीनी यात्री वेनसांग भी हर्षवर्धन के समय आया था और हर्षवर्धन के छठे महोत्सव में वह शामिल हुआ था। इस प्रकार हमने वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में अध्ययन किया। वर्धन वंश में कौन कौन से शासक हुए, इसका मुख्य शासक कौन था, इसके बारे में अध्ययन किया। वर्धन वंश के बाद में आगे पाल वंश के बारे में सुने। पाल वंश, इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? गोपाल। इस वंश का उद्भव कहां से हुआ था? बंगाल से हुआ था। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल था, जो इस वंश का सबसे महान राजा था। पाल वंश का सबसे महान राजा कौन था? धर्मपाल। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। उसने अपना राज्य कनौज तक विस्तृत किया। धर्मपाल ने अपने राज्य को कनौज तक फैला दिया था और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। देवपाल किसका पुत्र था? धर्मपाल का। इसने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल की राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल ने 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया। देवपाल के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी, कमजोर होने लगी। पालवंश की राजशक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी थी। नवे राजा महीपाल प्रथम, पालवंश के नवे राजा महीपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। चोल राजा था राजेंद्र प्रथम, जिसने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के सभी प्रदेशों को जीत लिया था। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई थी। 12वीं शताब्दी के मध्य में पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर हो गई। पालवंशी राजा बोध थे और उसके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला की प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा दसवें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वह भी गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा पिटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के भी महान प्रेमी थे। उनके काल में महान शिल्पी कौन थे? धीमान तथा विटपाल। तो पालवंश में महान शिल्पी कौन हुए थे? धीमान और विटपाल। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। तो पालवंश का संस्थापक कौन था? पालवंश का महान शासक कौन माना जाता है? पालवंश की शक्ति क्षीण कब हो गई थी? कौन कौन से महान शिल्पी थे? इसके बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वंश आता है राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? दंती दुर्ग को माना जाता है। इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? नासिक। इस वंश में 14 शासक हुए। राष्ट्रकूट वंश में कितने शासक हुए थे? 14 शासक हुए थे। और हमने पाल वंश में 10वें शासक नेपाल तक अध्ययन किया था। पाल वंश में 10 शासकों के बारे में, 10 शासक हुए थे और राष्ट्रकूट वंश में 14 शासक हुए थे। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। दास था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता को समाप्त कर दिया था। किसने? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग किस वंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट वंश की। कृष्ण प्रथम ने एलोरा, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है, एलोरा की सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने एलोरा की सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? एलोरा में। एलोरा कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। इस वंश के चौथे शासक, राष्ट्रकूट वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज को किस वंश के किस शासक ने पराजित किया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने पराजित किया था। और पांचवें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। राष्ट्रकूट वंश का पांचवा शासक गोविंद तृतीय था, जिसने गुर्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया और पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से काची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोघ वर्ष शांति प्रिय था। राष्ट्रकूट वंश का छठा शासक अमोघ वर्ष जो शांति प्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। जो शांति प्रिय होगा तो शासन भी अधिक समय तक करेगा। तो अमोघ वर्ष ने 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मान्य खेत, उसको मालखेड़ भी कहते हैं, मान्य खेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट वंशों की राजधानी मान्य खेत को बना दिया। मान्य खेत या मालखेड़ को किसने? राष्ट्रकूट वंश के छठे शासक अमोघ वर्ष ने राजधानी मान्य खेत को बना दिया था। अरबी यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। अरबी यात्री सुलेमान भी राष्ट्रकूट वंश के समय आया था। उसने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कनौज के तत्कालीन शासक महीपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट वंश का 12वां शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तिलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मान्य खेत पर अधिकार कर लिया। मान्य खेत जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, उन पर चालुक्य शासक तिलप ने 973 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। उस समय राष्ट्रकूट वंशों का राजा कौन था? कर्क द्वितीय था। कर्क द्वितीय को हरा करके मान्य खेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। तो राष्ट्रकूट शासक किस धर्म को मानने वाले थे? वैदिक धर्म को। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के भी पोषक थे। संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के भी पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा बलराज संबोधित किया। अरब शासकों ने अरबों ने इस वंश के शासकों को राष्ट्रकूट वंश के शासकों को बलराज संबोधित किया, बलराज या बलहरा बलहरा संबोधित किया था। इस प्रकार आज हमने मुख्य तीन वंशों के बारे में अध्ययन किया था, वर्धन वंश जिसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, दूसरा पाल वंश और तीसरा राष्ट्रकूट वंश के बारे में अध्ययन किया है, जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न लिखें। पहला प्रश्न लिखें, वर्धन वंश के तीन प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। वर्धन वंश के तीन प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। आंसर लिखें, प्रभाकर वर्धन, नंबर 2 राज्यवर्धन और नंबर 3 हर्षवर्धन। वर्धन वंश के तीन राजाओं के नाम प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। दूसरा प्रश्न लिखें, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? उत्तर लिखें, हेनसांग, हेनसांग वेनसांग, हेनसांग या वेनसांग। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग। अगला प्रश्न लिखें, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन कहाँ का शासक बना था? थानेश्वर का शासक बना था। हर्षवर्धन कहाँ का शासक बना था? उत्तर लिखें, थानेश्वर का शासक बना था 606 ईस्वी में। अगला प्रश्न लिखें, वर्धन वंश के किस राजा ने प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में एक महोत्सव का आयोजन करके दान देता था? वर्धन वंश के कौन सा राजा ने प्रत्येक 5वें वर्ष एक महोत्सव का आयोजन करके प्रयाग में एक महोत्सव का आयोजन करके दान करता था? तो कौन सा राजा था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में दान पुण्य करता था एक महोत्सव का आयोजन करके। अगला प्रश्न लिखें, पाल वंश की स्थापना कब व किसने की? पाल वंश की स्थापना कब व किसने की? आंसर लिखें, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की। 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न लिखें, पाल वंश के 2 महान शिल्पियों के नाम लिखिए। पाल वंश के 2 महान शिल्पियों के नाम लिखिए। उत्तर लिखें, पहला धीमान, दूसरा विटपाल। धीमान और विटपाल। अगला प्रश्न लिखें, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब व किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब व किसने की? उत्तर लिखें, 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न लिखें, राष्ट्रकूट वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूट वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? नासिक। उत्तर लिखें, नासिक। राष्ट्रकूट वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? नासिक थी। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, अगला प्रश्न लिखें, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के किस राजा ने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ तथा किस राजा ने करवाया? उत्तर लिखें, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया, जो राष्ट्रकूट वंश का था। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, अगला प्रश्न लिखें, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत को किसने बनाया? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत, कोष्टक में लिखें मालखेड़, को राजधानी किसने बनाया? उत्तर लिखें, अमोघवर्ष ने। राष्ट्रकूट वंश का जो छठा शासक था अमोघवर्ष, अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूटों की राजधानी किसको बना दिया था? मान्यखेत को। अगला प्रश्न लिखें, किस चालुक्य शासक ने मान्यखेत पर अधिकार कर लिया? किस चालुक्य शासक ने मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था? उत्तर लिखें, चालुक्य शासक तिलप। चालुक्य शासक तिलप ने 973 ईस्वी में मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था। उस समय राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन था? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को हरा करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था। अंतिम प्रश्न लिखें, राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के प्रबल समर्थक थे? राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के प्रबल समर्थक थे? उत्तर लिखें, राष्ट्रकूट वंश या राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। किस धर्म के प्रबल समर्थक थे? वैदिक धर्म के। इस प्रकार आज हमने 3 वंशों के बारे में अध्ययन किया और उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न और उत्तर भी लिखे हैं, इनको अच्छी तरीके से याद करें। अगली क्लास में हम अगले वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।